तो दक्ष प्रजापति की 14 कन्या, 15वीं कन्या का नाम हुआ स्वादा, और यह स्वादा का विवाह अग्नि के साथ कराया गया, जिससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। और दक्ष प्रजापति की अंतिम 16वीं सबसे छोटी कन्या, अब हमारी कथा वास्तविक शुरू होने जा रही है। दक्ष प्रजापति की अंतिम सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था सती, दक्ष प्रजापति ने अपनी सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कराया। बोले भगवान भोलेनाथ की, बिलेश्वर महादेव की। सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने शिव जी के साथ कराया, और शिव जी और सती दोनों गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, बहुत सुंदर। परंतु मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, विदुर जी ने पूछा कि आपने सभी लोगों के संतान का वर्णन किया, सभी कन्याओं के, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 5, सबको संतान हुई, सती को कितनी संतान हुई? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, भवस्य पत्नी सती भवं देवं मनोव्रता आत्मना सदृशं पुत्रं नले भे गुणशीलत। मित्र जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भवस्य पत्नी, ये भव की, शिवजी की जो पत्नी सती थी, देवम अनुव्रता, वे शिवजी की बहुत सुंदर सेवा करती थी, पतिव्रता नारी थी। परंतु पतिव्रता नारी होने से आत्मन सदृशम पुत्रम, यदि उसे पुत्र हुआ होता तो शिवजी जैसा गुणवान गुणशाली पुत्र हुआ होता, परंतु न लेभे, परंतु सती शिवजी जैसे शिवजी के अंश शिवजी के पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाए, न लेभे गुणशीलता। क्यों, कारण क्या था? कारण बताते हुए कहते हैं, पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नागसे रुषा अप्रोढे वात्मनात्मानं अजहाध्योग संयुता। पीत प्रति रूपे स्वे, पुत्र नहीं होने के का कारण शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में कुछ अन संबंध हो गया था, कुछ मन मोटाव हो गया था। दक्ष प्रजापति और शिवजी, श्वशुर और दामाद के बीच में कुछ झगड़ा था, और उस झगड़े के कारण अप्रोढे एव आत्मना, पुत्र होने से पहले ही आत्मनाम अजहात योग संयुता, सती ने अपने देह को उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में त्याग दिया। गर्भवती होने से पहले ही, संतान होने से पहले ही सती ने आत्महत्या कर ली, मर गई सती। तब विदुर जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, विदुर जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? जिस शरीर को टिकाए रखने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, हम लोग शरीर को टिकाने के लिए कितना भोजन खाते हैं, इसको धोते हैं, नहलाते हैं, क्या कुछ करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, लोग अपने शरीर से इतना प्रेम करते हैं। और सती जो बुद्धिमान थी और शिवजी की पत्नी थी, साक्षात भोलेनाथ की, जो शिवजी दूसरों को सोने की लंका दे सकते हैं, दूसरों को सभी दूसरे की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, ऐसे शिवजी की पत्नी होकर उनको आत्महत्या करनी पड़ी? शिवजी के पास क्या कमी थी उसे आत्महत्या करनी पड़ी? विदुर जी बहुत लंबी जिज्ञासा करते हैं, परंतु सती के इस आत्महत्या के पीछे एक कारण रामायण में बताया गया है और एक कारण भागवत में बताया गया है। आप कौन सा सुनना चाहेंगे कि दोनों सुनना चाहेंगे? आइए, रामायण में क्या कौन सा कारण बताया गया है ये सुनते हैं। सती के आत्महत्या करने के पीछे पहला कारण जो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में वर्णन करते हैं, सती और शिव जी बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। दोनों एक दूसरे से सुखी थे, प्रसन्न थे और कहीं भी जाते थे तो साथ साथ जाते थे। रामायण में वर्णन किया है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की यह बात है, एक समय की बात, त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ शंभु शिवजी कुंभज ऋषि के पास गए थे। क्यों गए थे? शिवजी को कुंभज ऋषि के पास जाना क्यों हुआ? शिवजी भगवान के परम भक्त हैं और शिवजी को भगवान की कथा सुनने में बहुत आनंद आता है। शिवजी को राम कथा कृष्ण कथा सुनने में बहुत सुख मिलता है। तो राम कथा सुनने के लिए शिवजी एक बार कुंभज ऋषि के पास गए। बोले, अकेले चले गए? नहीं, शिवजी जब भी कहीं मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो अकेले नहीं जाते हैं, अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती, अपनी पति पत्नी सती को साथ में लेकर गए। देखिए, शिवजी जो हैं, हम गृहस्थों के लिए एक आदर्श हैं। शिवजी का जीवन हमारे लिए आदर्श है। हम भी गृहस्थ हैं, हम भी पत्नी वाले हैं, पति वाले हैं। हमें कभी भी मंदिर में जाना हो, कथा में जाना हो, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाना, ये पति का धर्म है। पति का धर्म है कि अपनी पत्नी को धर्म में लगाए, भक्ति में लगाए। वही पति पति है जो अपनी पत्नी को धर्म में लगाए रखता है। शिवजी ये सिखाते हैं और भी कई सारी बातें शिवजी सिखाते हैं। शिवजी बहुत सुंदर बात सिखाते हैं कि दूसरों को जब देना हो तो हृदय के दरवाजे खोल देने चाहिए। आपने देखा, शिवजी जब दूसरों को देने बैठते हैं, सोने की लंका दे देते हैं और अपने लिए एक झोंपड़ी भी नहीं बनाए, वृक्ष के नीचे रहते हैं। वैराग्य, परम वैराग्यशाली, हमारे लिए आदर्श है। भागवत में पूछा गया, शिवजी कौन है, शिवजी का स्थान क्या है? तब भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे संसार में अनेक नदियां, जमुना यमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी अलकनंदा, अनेक अनेक नदियां हैं, परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है जो त्रिभुवन को पवित्र करती हैं। ब्रह्मलोक से चली हिमालय और हिमालय से प्रयाग होते हुए गंगा सागर तक करोड़ों करोड़ों को पवित्र करते चलती है। देवानाम अच्युतो यथा, देवता तो बहुत सारे, 33 करोड़ देवी देवता हैं, परंतु सभी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु अच्युत। पुराणाम इदमस्तथा, और वैसे तो पुराणों की संख्या 18 है, परंतु सभी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम। वैसे ही सभी वैष्णवों में कोई श्रेष्ठ यदि है, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है, देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, वैसे वैष्णवों में यदि कोई श्रेष्ठ है, भागवत कहता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों के अग्रगण्य, सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ। हम सब वैष्णव बनना चाहते हैं, शिव जी का आदर, शिव जी की कृपा लेनी चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कभी भी भगवान की कथा को छोड़ते नहीं है, अपने घर से चलकर दूर दूर जाकर शिव जी भगवान की कथा है? अब कहां हिमालय में शिव जी का घर और कहां कुंभज ऋषि का आश्रम, शिव जी गए कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुन। और जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब शिव जी भगवान का दर्शन करने के लिए भी आते हैं। कृष्ण अवतार में आए थे और कृष्ण अवतार में आए उनके पहले भगवान शिव ने कहा कृष्ण को कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे नाथ हो, आपकी लीला में आप सबको प्राप्त करते हो, सबको लाभ देते हो, आप मुझे लाभ दीजिए, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तब भगवान ने कहा कि आप नंदगांव में पहुंच जाओ, हम वहां पर आएंगे और लीला करेंगे। साक्षात भोलेनाथ शिव जी एक बहुत बड़ा पर्वत का स्वरूप धारण किए और पर्वत का स्वरूप धारण करके नंदगांव में वे विराज गए। आज हम नंदगांव, जिस पर्वत के ऊपर नंदगांव में जो पर्वत है वो पर्वत और कोई नहीं, साक्षात शिव जी है, नंदीश्वर महादेव वहां पर शिव जी विराजमान है और उनके ऊपर भगवान ने अपना श्री चरण रखा है। शिव जी अपने आप को धन्य समझते हैं जब भगवान का चरण उनके ऊपर पड़ता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धराधाम से उतरकर इस संसार में आए तब शिव जी को पता चला कृष्ण आए हैं, हमारे स्वामी इस पृथ्वी पर आए हैं। शिव जी अपने कैलाश को छोड़कर वृंदावन गोकुल में पहुंचे। शिव जी ने देखा अंग में विभूति लगी हुई है, गले में मुंड माल है, सर्प है, इस स्वरूप को देखकर ब्रज के लोग डर जाएंगे, इसलिए शिव जी ने अपना रूप बदल दिया, एक योगी का रूप ले लिया, जोगी बनकर आए। लेकिन भक्तों, कोई व्यक्ति कितना भी मेकअप करे परंतु अपना स्वरूप छिपा नहीं सकता है। शिव जी ने यद्यपि ही जोगी का रूप धारण किया परंतु बहुत भयानक लग रहे थे। आए यशोदा मैया के घर पर और यशोदा मैया के वहां कहा भिक्षान देही माते। यशोदा ने कहा क्या चाहिए बाबा जी, सोना चांदी जवेरात? बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके लाला का दर्शन करना है, आपके लाला का दर्शन एक बार करा दो। यशोदा ने कहा आपको देखकर मैं डर गई, मेरा लाला डर जाएगा, रोने लगेगा और फिर उसे शांत रखना मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी आप जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे लाला का दर्शन आपको नहीं करा सकते। शिव जी ने कहा कि मैं तो बस लाला का दर्शन चाहता हूं। मैया ने ना कहा और शिव जी दुखी होकर निराश होकर वहां से निकल गए। प्रभु ने देखा मेरा भक्त कैलाश से चलकर आया है मेरा दर्शन करने के लिए और माँ ने बिना दर्शन कराए ही उसे लौटा दिया। शिव जी से ज्यादा, भक्त से ज्यादा भगवान परेशान हो गए। जैसे ही शिव जी मुड़ गए यहां भगवान रोने लगे, रोना शुरू कर दिया। वास्तव में भक्त को भगवान से मिलने की जितनी उत्कंठा होती है उससे कई गुना ज्यादा भगवान को अपने भक्त से मिलने की उत्कंठा होती है। जीव से शिव जी मुड़ गए तुरंत कृष्ण रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण अभी नंदगांव से, शिव जी नंदगांव की सीमा से बाहर नहीं पहुंचे थे और यहां पर लाला को शांत करने का बहुत प्रयास, परंतु हुआ नहीं। तब किसी दासी ने कहा, मैया लगता है इस पर कि कोई ग्रह छा गया है, कोई ग्रह नड़ रहा है। बोले क्या किया जाए? बोले वह जोगी जो है ग्रह उतारना जानता है। तब मैया ने कहा तुरंत उसे बुलाओ और हमारे लाला के ग्रह को उतारो। शिव जी को बुलाया गया, शिव जी तुरंत आए और कृष्ण को शिव जी के सामने रखा गया। शिव जी के सामने कृष्ण आते ही जो घंटों से रो रहे थे, शिव जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। शिव जी भी अपने प्रभु को देखकर धनिया की धनी हो गए। परंतु अब शिव जी को लोभ उत्पन्न हुआ। भक्त को भी कभी भक्ति का लोभ होता है। शिव जी ने कहा, मैया मैया आप चाहती हो कि आपका लाला इसी प्रकार जीवन भर तक हंसते रहे? अब कौन मां नहीं चाहेगी हमारा बच्चा हंसते रहे, प्रसन्न रहे? बोले हां। बोले तो मैया मेरी जटा में एक जादू है, चमत्कार है। यदि आपके आपके लाला का चरण पांव मेरी जटा में स्पर्श करा दो, जीवन भर हंसता रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तुरंत मैया ने कृष्ण को उठाया, उठाकर कृष्ण के चरण शिव जी की जटा में स्पर्श कराए। शिव जी तो यह चरण स्पर्श करके नाचने लगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
शिव जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आप भी गाइए प्रेम से।
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
शिव जी नाच रहे हैं, आप भी नाचिए।
हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जब भी भगवान का नाम लिया जाता है तब नाचना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि यदि आप सोते सोते भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने आकर बैठ जाते हैं। यदि आप बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने आकर खड़े रह जाते हैं। यदि आप खड़े खड़े भगवान का नाम लेते हो तो भगवान आपके सामने नाचने लगते हैं। और यदि आप नाचते नाचते भगवान का नाम लेते हो तो नाचने वाले भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। इसलिए सब लोग, माताएं भी नाच सकते हैं, प्रभु भी नाच सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
नाचिए प्रेम से।
हरे कृष्णा
हो राधे
कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सभी लोग प्रेम से
हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान श्री कृष्ण के चरण शिव जी की जटा में स्पर्श हुए। शिव जी ने विचार किया कि आज तक जो जल भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुआ है उस जल को मैं मेरे मस्तक पर धारण कर रहा था, परंतु आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण का चरण मेरे मस्तक पर आ गया, आज तो मैं धन्याति धन्य हो गया।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे।
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की
जय।
बिलेश्वर महादेव की
जय।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया और अपने आप को धन्याति धन्य समझे। आज शिव जी धन्य बने हैं और इस उत्साह को लेकर शिव जी अपने धाम को वापस लौटे हैं। ये केवल कृष्ण अवतार की ही बात नहीं है, राम अवतार में भी शिवजी और काकभूषणी जी दोनों आए थे भगवान राम का दर्शन करने के लिए। जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब शिवजी दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जब जब भगवान की कथा होती है तब तब शिवजी दर्शन करने के लिए जाते हैं। भक्तों, भगवान का दर्शन दो प्रकार से होता है। वहां पर शिवजी ने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया, और आज शिवजी अपने कानों से भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन आंखों से भी होता है और दर्शन कानों से भी होता है। और आंखों से दर्शन करना और कानों से दर्शन करना, ये दोनों दर्शनों में श्रेष्ठ है कानों से दर्शन करना। क्योंकि आज यदि भगवान हमारे सामने आ भी जाए ना, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। उस भगवान को समझने के लिए, पहचानने के लिए कानों से भगवान का दर्शन करना जरूरी है। कानों से भगवान को देखना जरूरी है। कानों से देखने का अर्थ है कानों से भगवान को सुनना चाहिए। जब तक भगवान को हम सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। यही कथा आगे आ रही है। शिवजी गए थे भगवान के बारे में सुनने के लिए। शिवजी ने सुना लेकिन पत्नी ने नहीं सुना, और नहीं सुनने से सती को मरना पड़ा। कुमज ऋषि के पास गए, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कुंभज ऋषि ने, अगस्त जी ने बहुत सुंदर कथा कही, और इस कथा को सुनकर शिवजी परम प्रसन्न हुए। परंतु कथा को सुनते सुनते शिवजी तो बहुत अच्छी तरीके से सतर्क होकर बिना सोए कथा सुन रहे थे, परंतु स्त्रियों का स्वभाव, देवी सती ही कथा सुनते सुनते सो गई। कभी कभी होता है कथा में नींद आ जाती है, परंतु कथा में नींद आना बहुत खतरनाक है, भयावह है। देवी सती को कथा में नींद आई, आगे चलकर आत्महत्या करना पड़ा। कथा में नींद आई, आगे बहुत सुंदर प्रसंग है। दोनों ने कथा सुन ली, और कथा सुनकर जब वे वापस लौटे, उस समय त्रेता युग आ चुका था। भगवान श्री रामचंद्र अवतार ले चुके थे, कैकेयी ने वो वरदान मांग लिया था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के लिए राम को वन में भेजे, और अपने पिता के धर्म का पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र 14 साल के लिए अपनी पत्नी सीता और लखनलाल के साथ वन में निकल चुके थे। रावण आ चुका था और सीता का हरण करके चला गया था, और भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को हासिते हासिते पागलों की भांति ढूंढ रहे थे। भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बहुत विह्वल हो गए। संसार का साधारण आदमी भी जब अपनी पत्नी खो जाएगा तो पत्थर को नहीं पूछेगा कि मेरी पत्नी को देखा, पक्षी को नहीं पूछेगा, परंतु भगवान राम प्रत्येक पत्थर को, प्रत्येक पक्षी को। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। हे मृग, मृग को पूछते थे, हे खग पक्षी को पूछते थे, पेड़ को पूछते थे, पत्थर को पूछते थे कि आपने मेरी सीता को देखा? उनकी आंखें हिरण के समान थी, मेरी सेवा करती थी, पतिव्रता नारी थी। क्या आपने मेरी पत्नी को देखा? विवल होकर भगवान राम रोते हुए, मूर्छित होते हुए उस जंगलों में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे। और उसी समय शिवजी अपनी पत्नी सती के साथ नंदी बैल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। शिवजी ने दूर से देख लिया भगवान राम की लीला चल रही है। दूर से ही शिवजी ने प्रणाम किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, अद्भुत भगवान की लीला। ये सोचकर शिवजी ने दूर से ही मन में भगवान रामचंद्र को प्रणाम किया। परंतु देवी सती समझ नहीं पाई। देवी सती अपने मन में सोच रही हैं, जो चराचर के गुरु हैं, बड़े बड़े महात्मा साधु संत हमारे पति शिव को प्रणाम करने के लिए आते हैं, और ऐसे भोलेनाथ महादेव संसार के साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसा मनुष्य जो स्त्री लंपट अपनी पत्नी खो गई तो उसके पीछे पागल हो गया है, ऐसे साधारण मनुष्य को प्रणाम। यह सती भगवान के प्रताप प्रभाव को समझ नहीं पाए। क्यों जानते हैं? क्योंकि कथा में सो गई थी। यदि ठीक से कथा सुनी होती कुंभज ऋषि के पास तो यह संशय उत्पन्न नहीं हुआ होता। लेकिन कथा में सो गई, यहां संशय उत्पन्न हुआ और मन में सोचा कि अब मैं इसकी परीक्षा लूंगी। देवी सती भगवान की परीक्षा लेने चली है। शिवजी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। शिवजी तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती गई भगवान राम की परीक्षा लेने। भक्तों, जो भगवान ब्रह्मांड में रहने वाले अनेक जीव की परीक्षा लेते हैं, शिव सती उस भगवान की परीक्षा लेने चली है। कितना बड़ा अपराध है? कथा में सोने के कारण अपराध। और कैसी परीक्षा? भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे, तब सती जो थी वह सीता का रूप धारण किया, हूबहू सीता जैसी बन गई। और भगवान राम सीता को ढूंढने के लिए जिस दिशा की ओर जा रहे थे उस दिशा से ये सती सीता का रूप लेकर आ रही थी। मन में ऐसा लगा कि ये राम मुझे सीता मान बैठेंगे। सीता बनकर गई बिल्कुल। और लक्ष्मण ने दूर से देखा, मिल गई भाभी, सीता मिल गई। मन में लक्ष्मण को उत्साह हुआ। भगवान ने इशारा किया, लखन चुप शांति रख। भगवान राम रोते हुए विवल होते हुए उस सीता बनी हुई सती के पास गए और जाकर प्रणाम किया। देवी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूं, मेरी पत्नी को खोज रहा हूं, मेरी पत्नी खो गई है। परंतु हे देवी, आप अकेले इस घोर जंगल में क्या कर रही हो? हमारे प्रभु शिवजी कहाँ है? जब भगवान ने यह कहा कि शिवजी कहाँ है, आपके पतिदेव कहाँ है, हमने तो सुना था कि आप पतिव्रता हो, अपने पति को छोड़कर कहीं जाती नहीं हो, इस घोर वन में अकेली क्या कर रही हो? भगवान ने जब ऐसा कहा और सीता का स्वरूप बनाकर खड़ी थी, सती को लगा कि यदि पृथ्वी फट जाए तो समा जाऊं, इतनी लज्जा आई। परंतु उस समय सती अपने मुंह को छिपाकर वहां से वापस आई। जब वापस आने के लिए अपनी दिशा को बदला तो अनेक ऐश्वर्यमयी, अनेक रूपों में भगवान रामचंद्र दिखाई दिए, अनेक रूपों में सीता दिखाई दी, अनेक देवता भगवान की उपासना कर रहे हैं। सती दौड़ते हुए अपने पति के पास आ गई। शिवजी ने पूछा क्या हुआ, परीक्षा हो गई? सती कहती है ऐसे तो गई थी परीक्षा लेने, परंतु फिर मुझे विश्वास हो गया कि वो भगवान ही होंगे। शिवजी ने अपने ध्यान में बैठकर सब कुछ देख लिया था, और शिव जी को जब पता चला कि ये नारी मेरी पत्नी होकर मुझसे झूठ बोल रही है, एक पत्नी को अपने पति से कुछ नहीं छिपाना चाहिए, और यदि एक पत्नी अपने पत्नी से कुछ छिपाती है तो वो पत्नी पत्नी नहीं है। शिव जी ने कहा मुझसे छिपा रहे हैं। तुरंत रामायण में वर्णन है, शिव जी ने मन ही मन अपनी पत्नी को त्याग दिया, अब इसका संग नहीं करूंगा, क्योंकि ये पत्नी कहां है, पत्नी तो अपने पति की आज्ञाकारी होती है। तुरंत उस समय मन से त्यागा, और इसी के कारणवश, क्योंकि शिवजी ने मन से त्याग दिया तो अब कौन ज्यादा देर तक जी सकता है, सती ने आत्महत्या की। ये रामायणकार ने रामायण में कारण बताया है, परंतु भागवत में कुछ अन्य कारण है, भागवत में वास्तविक कारण है। विदुर जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आप सती के आत्महत्या करने का कारण बताइए।
विदुर उवाच भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रवत्सल विद्वेषमकरोदस्मा अनादुत्यात्मजां सतिम्।
हे प्रभु, भवे सिलवताम श्रेष्ठ, भव भव का अर्थ होता है शिवजी। शिवजी को भव क्यों कहा जाता है आपको पता है? भव सर्वोद्भव कारणम, सर्व उद्भव कारणम इति भव, जो सभी उद्भव के कारण है। उद्भव में भव शब्द लगा है, सर्वोद्भव कारण, कामोद्भव कामह, इसलिए शिव जी को भव कहा जाता है। विदुर जी कहते हैं भवे शिलवताम श्रेष्ठ, ये भव जो है शिव जी जो है शिलवताम, शिल का अर्थ होता है सुशीलता, सुशीलों में शिवजी श्रेष्ठ है। शिल शिलवताम, शिल का एक अर्थ होता है निर्वैर, जो कभी किसी से वैर नहीं रखता है। शिवजी कभी भी किसी से वैर नहीं रखते, समदर्शनत्वात्, शिवजी समदर्शी है, जो समदर्शी है किसी से वैर नहीं रखते हैं, और शीलों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे शिव जी का झगड़ा दक्ष प्रजापति के साथ कैसे हो सकता है? दुहित्रु वत्सल, और उसमें भी शिव जी में बहुत सारे गुण हैं, और उसी के साथ साथ दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती के साथ बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पुत्रियों पर बहुत स्नेह रखने वाले, वत्सल के समान। शिव जी इतने गुणवान हैं और दक्ष प्रजापति अपनी कन्या के प्रति प्रेम प्रेम करने वाले, फिर भी विद्वेषम अकरोत कस्मात, फिर भी दक्ष प्रजापति ने विद्रोह क्यों किया, विद्वेष क्यों किया, शिव जी के साथ वैर क्यों किया? अनादृत्य आत्मजाम सतीम, अपनी आत्मजा अपनी पुत्री सती के पति शिवजी के साथ अनादृत्य अनादर क्यों किया? विदुर जी प्रश्न पूछते हैं। तब आगे विदुर जी अपने प्रश्न को बढ़ाते हुए कहते हैं, प्रभु इतना ही नहीं, शिवजी में बहुत सारे गुण हैं। कस्तम चरा चर गुरुम निर्वेर शांत विग्रहम, शिवजी जो है चर और अचर सबके गुरु हैं, ये भागवत में कहते हैं।
कस्तम चराचरम गुरु निर्वेरम शांत विग्रहम आत्मरामं कथं द्वेष्टि जगतो दैवतं मह।
प्रभु शिवजी चराचर, इस संसार में जो अचर हैं, जो चल नहीं सकते हैं, वृक्ष इत्यादि, अचर के गुरु हैं तो चर की क्या बात की जाएगी, सब के गुरु हैं। अब मन में ये प्रश्न हो सकता है, शिवजी सबके गुरु कैसे हो सकते हैं? अथवा दूसरे शब्दों में, शिवजी सबके गुरु हो सकते हैं, शिवजी को गुरु बनाने के लिए योग्य है? भागवत ने शिवजी को गुरु कहा है, भागवत ने शिवजी को वैष्णव कहा है, वास्तव में शिवजी गुरु है कैसे? इस संसार में गुरु वही बन सकता है जो भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किया हो, अथवा भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हुए व्यक्ति का शिष्य हो, या उनका प्रशिष्य हो, या उनके गुरु शिष्य की परंपरा में हो, वही इस संसार में किसी व्यक्ति का गुरु बन सकता है। अन्यथा कोई गुरु नहीं हो सकता। भक्तों, भगवान ने केवल चार लोगों को ज्ञान दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण ने चार कुमार को ज्ञान दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया। कृष्ण ने ये चार लोगों को ज्ञान दिया, जिन चार लोगों से चार संप्रदाय बने हैं। भक्तों, इस संसार में केवल चार संप्रदाय ही मुख्य है, बाकी सब संप्रदाय तो बनाए हुए हैं। आज तो रोज नया नया संप्रदाय बनते जा रहा है। वास्तव में संप्रदाय हम लोग नहीं बना सकते हैं, संप्रदाय भगवान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में अपना शुद्ध ज्ञान देने के लिए भगवान ने चार संप्रदाय बनाए। ब्रह्मा को ज्ञान दिया ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी को ज्ञान दिया श्री संप्रदाय, कुमारों को ज्ञान दिया कुमार संप्रदाय, और शिव जी को ज्ञान दिया रुद्र संप्रदाय। और ये चार लोग, ये चार संप्रदाय में यदि कोई गुरु शिष्य परंपरा में है, तब ही उसे वास्तविक ज्ञान मिल सकता है। अथवा ये चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में रहकर ही कोई व्यक्ति दूसरों को ज्ञान दे सकता है, अथवा गुरु बन सकता है। अखिल चराचर गुरु, शिवजी जो है भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किए हैं, इसलिए गुरु बनने के लिए योग्य है। परंतु शिवजी प्रकट रूप में तो आपके सामने है नहीं, इसलिए शिवजी की परंपरा में जो है आप उनको गुरु बना सकते हो। शिवजी की परंपरा में कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी को ज्ञान दिया, और उस रुद्र संप्रदाय के वाइस चांसलर हुए श्री विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया, और आगे चलकर इस संप्रदाय में वल्लभाचार्य आए, पुष्टि संप्रदाय का निर्माण किया। इस संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में यदि कोई दीक्षित होता है, यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है या दीक्षा लेता है, तो वह सीधा भगवान के साथ उनका संपर्क हो जाता है। देखिए, संसार में किसी ऐरे गहरे लोगों से ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, और संसार में किसी ऐरे गहरे लोगों से दीक्षा नहीं ले लेनी चाहिए। दीक्षा किसे लेनी चाहिए, ज्ञान किससे प्राप्त करना चाहिए, गुरु कौन हो सकता है, ये भागवत बता रहा है, भागवत सिखा रहा है। इसके बाद श्री संप्रदाय के वाइस चांसलर हुए रामानुजाचार्य, उनकी शुद्ध गुरु परंपरा में दीक्षा ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुमार संप्रदाय निंबाकाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्म संप्रदाय जिसके वाइस चांसलर हैं मध्वाचार्य। वास्तव में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। वास्तव में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो इस्कॉन है, ये इस्कॉन बिल्कुल सीधी शुद्ध परंपरा में है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद जी ने वेद व्यास को, वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य, मध्व ने पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मणी तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, और फिर इस परंपरा में साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसलिए ये ब्रह्म संप्रदाय नहीं, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु इस संप्रदाय में आए, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया, रूप के रघुनाथ, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हुए ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया, और जिनकी परंपरा में हम सब लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और भगवत कथा बोल रहे हैं। इसे कहते हैं शुद्ध परंपरा। कोई ऐरे गहरे रास्ते में चलते फिरते किसी भी लोगों से ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये पतन की निशानी है। हम हमारे बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो पहले देखते हैं कि ये स्कूल किसी यूनिवर्सिटी से है, किसी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है। जब संसार का साधारण भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इतना कुछ देखते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या देखने की आवश्यकता नहीं? क्या योग्य और शुद्ध गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं? गुरु वही हो सकता है जो यह चार संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में, अन्यथा वह गुरु नहीं है। और इसी के साथ साथ गुरु में योग्यता होनी चाहिए कि वो जो बोलते हैं उसका आचरण होना चाहिए। आज तो संसार में कुछ गुरु लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, व्यासपीठ पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। संसार से वैराग्य होना चाहिए, पत्नी से वैराग्य होना चाहिए, बच्चों से वैराग्य, वैराग्य की बातें करते हैं, परंतु वे लोग जो आज के बिल्कुल माने जाने वाले गुरु बिना पैसा लिए व्यासपीठ के ऊपर नहीं बैठते हैं। ये गुरु नहीं है, ये वक्ता नहीं है, क्योंकि खुद जब छोटे से धन की आसक्ति से मुक्त नहीं, संसार की आसक्ति से श्रोताओं को कैसे मुक्त करा पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। गुरु खुद वैरागी होना चाहिए, गुरु में आचरण होना चाहिए। ऐसा नहीं वो खुद बोलते हैं कुछ और करते कुछ और। एक बार एक माता अपने छोटे से बालक को लेकर मंदिर में गई। मंदिर में एक भक्त थे, कहा कि गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत मीठा चॉकलेट खाता है, आप इसे मना करो, उसके दांत बिगड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। तब उन्होंने कहा, आप एक काम करो, अगले रविवार को आप आ जाना, मैं उसे समझा दूंगा। दूसरे रविवार को माता अपने बच्चे को लेकर गई और गुरुजी ने बच्चे के सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा कि बेटा बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, दांत सड़ जाएंगे, बहुत कष्ट होगा। बच्चे ने दूसरे दिन से चॉकलेट खाना बंद कर दिया। तब वो माँ गुरुजी के पास गई और जाकर कहा कि गुरुजी, आपको केवल मेरे बच्चे को इतना ही कहना था कि मत खाना, तो पिछले रविवार को बता दिया होता, इसमें 7 दिन का समय क्यों लगाया आपने? तब गुरु ने इतना ही कहा कि माते, 7 दिन पहले मैं भी चॉकलेट खाता था, और मैं खुद खाऊं और दूसरों को उपदेश दूं कि मत खाना, इसे दूसरा समझ नहीं सकता है, वो उपदेश दूसरों के जीवन में आ नहीं सकता है, उतर नहीं सकता है। इसलिए 7 दिन तक मैंने चॉकलेट नहीं खाया, मैंने चॉकलेट को त्यागा, जब मैंने त्यागा तब मैंने आपके बालक को त्यागने का उपदेश दिया। जब खुद त्यागते हैं तब दूसरों को त्यागने का उपदेश। नहीं तो आजकल के गुरु आप जानते हैं, चक्की के ऊपर कुछ बात और चौकी के ऊपर और कुछ बात। ऐसा ही एक गांव था, इतना सुंदर पवित्र। ऐसे ही एक गांव में एक गुरुजी आए और वह गुरुजी जब प्रवचन करते थे पूरे गांव वाले एकत्रित हो जाते थे। गंगा की धारावत उसका प्रवचन होता था, लेकिन गुरुजी की पत्नी नहीं आती थी। कभी कभी ऐसा होता है, गुरुजी जाते हैं परंतु पत्नी का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो पूरा गांव उसके प्रवचन में बैठ जाता था। एक बार गांव के लोग गुरुजी की पत्नी के पास गए कि पूरा गांव आपके पति के प्रवचन में आता है, आप क्यों उसके प्रवचन में नहीं आती है? पत्नी ने कहा, देखो मैं तो आना चाहती हूं परंतु जब मेरे पतिदेव प्रवचन के लिए जाते हैं तो मुझे बहुत उनके लिए भोजन बनाना होता है। बोले एक दिन भोजन जल्दी बना लो और आ जाओ, देखो तो सही। बोले कोई बात नहीं, कल मैं भोजन जल्दी बना लूंगी और प्रवचन में आऊंगी। दूसरे दिन जल्दी भोजन बना लिया और गुरुजी के अपने पति के प्रवचन में जाकर बैठ गई। और उस दिन गुरुजी ने शुरू किया है, गंगा की धारा के समान ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। इस संसार में आप जैसा कार्य करोगे ऐसी गति पाओगे। यदि तमोगुणी कार्य करोगे नरक में जाओगे, रजोगुणी कार्य करोगे यहीं पर फंस जाओगे, सतोगुणी कार्य करोगे भगवान के धाम में जाओगे। और आपके कार्य का आधार आपके भोजन के ऊपर है। यदि सतोगुणी भजन करोगे सतोगुणी कार्य, रजोगुणी भोजन करोगे रजोगुणी कार्य, तमोगुणी भोजन करोगे तमोगुणी कार्य। इसलिए आप सबको सतोगुणी आहार लेना चाहिए। आहार शुद्ध सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि आहार शुद्ध है, यदि आहार सत्वगुणी है तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको मोक्ष मिलेगा। इसलिए तमोगुणी आहार नहीं करना चाहिए, कभी भी प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। गुरुजी ने उपदेश दिया, उपदेश सत्य था, उपदेश में कोई कमी नहीं रही। प्याज और लहसुन जो है तमोगुणी है, वहां पर काटा जाता है यहां आंसू निकलता है, कितना तमोगुणी है। प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, गुरुजी ने उपदेश दिया, सब लोगों ने ताली बजाई, खुश हो गए। गुरुजी की पत्नी खड़ी होकर दौड़कर घर पर चली गई। प्रवचन के बाद गुरुजी घर पर गए, पत्नी ने भोजन परोसा। जैसे ही गुरुजी ने पहला निवाला अपने मुख में डाला, डालकर ही फेंक दिया, थूक दिया, अरे छी इतना गंदा। बोले देवी कल तक तो अच्छा भोजन बनाती थी, आज क्या हो गया? तब गुरुजी की पत्नी दोनों हाथ जोड़कर अपने पति को कहने लगी, पति देव आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आज तक पता नहीं था, लेकिन आज मैं आपके प्रवचन में आई तब मुझे पता चला हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मुझे क्षमा कर देना, मैं रोज आपको प्याज और लहसुन खिलाती थी लेकिन आज मैंने सुना तो घर पर आकर प्याज लहसुन वाला भोजन फेंक दिया और बिना प्याज लहसुन वाला भोजन बनाया है। तब गुरुजी ने कहा, पागल ये तो गांव वालों के लिए है, मेरे लिए तो डबल तड़का मारकर प्याज और लहसुन वाली सब्जी बनाना चाहिए। ये है आज के गुरुजी, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। ऐसे लोगों के मुख से आप एक नहीं हजारों कथा भी सुन लो, हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है, जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आचरण करता है और आचरण करके प्रचार करता है, उनके मुख से एक बार भी एक कथा भी सुन लोगे जीवन बदल जाएगा और मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करोगे। श्री प्रभुपाद जी हमारे इस संस्था के संस्थापक आचार्य कलाकार नहीं थे, कोई कथाकार नहीं थे, आचार्य थे। अपने आचरण से दूसरों को उपदेश देते थे, सिखाते थे। और एक बार भी व्यक्ति उनके संपर्क में आ गया तो वह भक्त बन जाता था, आचरण से भक्त बनते। कुछ लोगों कथा करते हैं तो लाखों लोग बैठते हैं लेकिन जीवन किसका बदला है? हमारी नजरों में ऐसे कथाकार हैं, हजारों लोग जुटते हैं लेकिन सुबह चाय छोड़ नहीं सकते हैं, प्याज लहसुन छोड़ नहीं सकते हैं, गांजा छोड़ते नहीं है, शराब छोड़ते नहीं है, क्योंकि कथा करने वाला खुद पी लेता है, कभी कभी मार देता है, श्रोता क्यों नहीं मारे भक्तों। गुरु उसे बनाना चाहिए जो आचरण करे, आचरण से दूसरों को उपदेश दे, और जो संप्रदाय के अंतर्गत है, चार संप्रदाय के अंतर्गत है। यहां पर विदुर जी कह रहे हैं कि हे मित्र ऋषि, कस्तम चरा चरम गुरुम, शिव जी जो है चर और अचर के गुरु हैं, और गुरु जो होते हैं पूजनीय होते हैं, और इतने सुंदर इतने अच्छे पूजनीय शिव जी के प्रति दक्ष प्रजापति ने द्वेष क्यों किया, वैर क्यों किया, और इतना ही नहीं इसी के साथ साथ निर्वैरम कथम तत्र द्वेषस्या युक्तम इत्या आकांक्षया लोके वैरिणेव तद्दर्शनेन निर्वेणित। संसार का यदि कोई व्यक्ति शिवजी से वैर करे, परंतु शिवजी किसी से वैर नहीं करते हैं, इसे कहते हैं निर्वैर। हम लोग क्या होता है, हम लोग को कोई गाली देता है तो हम उसे दो गाली दे देते हैं, साला मुझे गाली देता है, हमको कोई एक थप्पड़ मारता है तो हम दो मार देते हैं, इसे कहते हैं वैरी। परंतु कोई कितना भी वैर करे, कितना भी अनिष्ट सोचे, अनिष्ट करे, परंतु उनका थोड़ा भी प्रतिकार न किया जाए, उसे निर्वैर कहते हैं। निर्वैर शिव जी निर्वैर है, शिव जी चराचर के गुरु हैं, निर्वैर हैं, और इसी के साथ साथ शांत विग्रहम, बिल्कुल शांति के विग्रह हैं, परम शांत। शांत का अर्थ है शांत तपोनिष्ठ विग्रह देहो, जो तप निष्ठ है, जो तप में निष्ठ, जो निष्ठा से तप करते हैं, उसे शांत कहा जाता है। शिव जी का तप जो है बिल्कुल निष्ठा युक्त है। शिव जी क्या तपस्या करते हैं, शिव जी की दो तपस्या है। शिव जी एक तो निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और भगवान का नाम लेते रहते हैं। वास्तव में कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या जानते हैं, हिमालय में जाना नहीं, एक पांव पर खड़े रहना नहीं, कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या यदि कोई है तो वह है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सबसे बड़ी तपस्या कष्ट है। शिव जी निरंतर भगवान का नाम, चराचर के गुरु हैं, निर्वैर हैं, शांति के विग्रह है, मूर्तिमान स्वरूप है, और उतना ही नहीं आत्मरामम आरामम, और शिवजी आत्मराम है। आत्मराम का अर्थ है जो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला, अर्थात उसे सुखी होने के लिए बाहर से कुछ वस्तु लेने की जरूरत नहीं है, जो अपने आप में प्रसन्न रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं। शिवजी को सुखी होने के लिए बाहर से कुछ खरीदने की, कुछ लेने की कोई जरूरत नहीं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा में रमण करता है, जो आत्मराम है, उसे उसके साथ द्वेष क्यों हो, दक्ष प्रजापति ने द्वेष क्यों किया। श्रीपाद छिद्र स्वामी बहुत सुंदर बात कहती है, आत्मन आत्मन एव आरामो रतिर्यस्य न तु विषयतम। शिव जी की जो आत्मा है वह परमात्मा का घर है। आत्मा राम का अर्थ यहां पर सीधे स्वामी कहते हैं कि भगवान राम का आराम करने का जो स्थल है वह है शिव जी। भगवान राम शिव जी के हृदय में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। साक्षात भगवान जिसके हृदय में बैठे हैं, उस भक्त के प्रति द्वेष क्यों हो सकता, कैसे हो सकता है। आत्मरामम कथमम द्वेष्टि जगत दैवतम महत। मानो यदि यह प्रश्न हो कि शिव जी भले गुरु हैं, भले बड़े हैं, ननु दक्षो अपि महान एव, तो इसी के साथ दक्ष प्रजापति भी बड़े हैं, वो भी महान है। भले शिव जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। प्रजापति अध्यक्षत्वाद ब्रह्म पुत्र, शिव जी और दक्ष वैसे पोजीशन में दोनों समान हैं, तो फिर दक्ष प्रजापति क्यों शिव जी को आदर देगा? बोले दक्ष प्रजापति शिव जी को इसलिए आदर देगा क्योंकि शिव जी जगत देवतम महत, क्योंकि शिव जी जो है इस जगत में सभी आराध्य देव में श्रेष्ठ है। संसार के लोग शिव जी की आराधना करते हैं, परम आराध्य देव है। इस संसार में पांच प्रमुख देवता हैं, उनमें से एक शिव जी है, परम आराध्य है। देवताओं में शिव जी श्रेष्ठ है। भगवान श्री विष्णु के बाद शिव जी का नाम आता है क्योंकि शिव जी भगवान श्री विष्णु के अंश हैं। शीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे दूध से दही बनता है वैसे कृष्ण से शिव जी बने हैं, इसलिए शिव जी परम आराध्य है। पर ऐसे शिव जी से द्वेष दक्ष प्रजापति ने क्यों किया? एतद आख्या ही मे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, विदुर जी मैत्र ऋषि को ब्रह्मन कहते हैं कि हे ब्रह्मन। ब्रह्मन माने ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, जो वेद को पूरा पूरा जान लिया है उसे ब्रह्मन कहा जाता है। हे मैत्र ऋषि, आप वेद को पूरा पूरा जान चुके हो, आप इस कथा को पूर्ण रूप से जानते हो, आप सर्वज्ञ हो और प्रश्न उत्तर सामर्थ्यम आह, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो, इसलिए हे ब्रह्मन एतद आख्या ही, इसका कारण बताओ। दक्ष प्रजापति ने शिवजी पर क्रोध क्यों किया और सती ने आत्महत्या क्यों की? जामातु ससुरस्य च, इस संसार में कोई व्यक्ति किसी के भी साथ झगड़ा कर लेगा परंतु अपने ससुर के साथ थोड़ी ना करेगा। ससुर के साथ झगड़ा कैसे कर सकता है? तो ये आज तक इतिहास में दामाद और ससुर के बीच में हमने झगड़ा नहीं सुना, परंतु यहां पर दामाद और ससुर के बीच में विद्वेषतु यत प्राणान त्यजते दुस्त्यता जान सती, उस दामाद और ससुर के झगड़े में वो झगड़ा कैसा होगा जिस झगड़े के कारण सती को अपना देह त्यागना पड़ा? कितना सुंदर, इसे कहते हैं भागवत की गहराई। प्रभु वो झगड़ा कितना बड़ा होगा जिस झगड़े के कारण सती को देह और देह को त्यागना, कहते हैं यत प्राणान त्यजते दुस्त्यजान, अरे जिस देह को त्यागना दुस्त्यज बहुत मुश्किल है। आज आप सब कुछ त्याग सकते हो लेकिन देह को त्यागना बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति अपने देह को त्यागना नहीं चाहता है, चाहता है कि मैं मर जाऊं। कुछ लोग कहते हैं मैं जहर पी लूंगा, आत्महत्या कर लूंगी, क्या बोल सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। और कुछ लोग आवेश में आकर आत्महत्या करने बैठ जाते हैं, जब जहर पी लेते हैं जल जाते हैं तब पता चलता है अरे ये नहीं किया होता तो अच्छा था। अपने प्राण को त्यागना दुस्त्यज बहुत मुश्किल है, ये प्राण त्यागा नहीं जाता है। ऐसे ही एक वन में जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उनके तीन चार पुत्र थे परंतु शहरों में चले गए थे, पति नहीं थे। जंगल में लकड़े काटकर उसको बेचकर अपना जीवन चलाती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत जंगल में गई, बहुत सारे लकड़े काटे और उसकी बोरी बनाकर अपने सिर पर चढ़ाने गई। तब उस औरत के मन में हुआ, जीवन इतना लंबा जीवन बीत गया, चार चार पुत्र है लेकिन फिर भी इतना घर का काम मुझे करना पड़ता है, हे प्रभु इससे तो मैं मर गई हो गई तो अच्छा था, इससे तो अच्छा था कि मैं मर गई होती। अब उस बूढ़ी औरत ने क्या पता प्रेम से भगवान को याद किया, भगवान श्याम सुंदर बंसरी बजाकर सामने खड़े हो गए, माताजी मुझे याद किया आपने, आपने आपकी कोई इच्छा थी? बूढ़ी औरत ने कहा था क्या सोचकर याद किया, प्रभु मुझे उठा लो, यदि मैं मर गई होती तो अच्छा था। भगवान सामने आए और भगवान ने कहा, माताजी याद किया मुझे, आपने मुझे बुलाया। तब बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ हाँ प्रभु मैंने आपको बुलाया, ये बोरी मेरे सिर पर रखवा दो आप। बहुत मुश्किल है भाई, देह को त्यागना, प्राण को त्यागना, जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब पता चलता है। तो कहते हैं दुष्ट जिस शरीर को त्यागना बहुत मुश्किल है, ऐसे दुष्ट शरीर को सती ने ये दामाद और ससुर के झगड़े में त्याग दिया। बताइए ये ससुर दक्ष प्रजापति और दामाद शिवजी, ये दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये झगड़े के बारे में बताइए और झगड़े का रिजल्ट क्या आया ये भी बताइए, और ये सारी कथा मुझे विस्तार से बताइए। विदुर जी की जिज्ञासा, मैत्रेय मुनि प्रसन्न हुए और मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देना कल से प्रारंभ करेंगे। कल के सत्र से अब मैत्रेय मुनि कथा शुरू करेंगे कि एक समय की बात, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और उसमें शिव जी गए थे, और बहुत सुंदर सुंदर कथा आएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है आप यहां पर आते रहिए, शिव जी के गुणगान, परम वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त के गुणगान हो रहे हैं, भगवान के गुणगान और भागवत कथा। और 5 दिन बाकी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, भागवत कथा का लाभ लीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।